समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
कहते हैं जिस दिन आप अपनी सोच को बड़ा कर लेंगे उसी दिन से बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। तो इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर आज सवेरे कार्यक्रम में एक नई सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर है लेकर देश और दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संघ के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट वीसी प्रमोद। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और प्रमोद, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
गुड मॉर्निंग जया, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। We bring for you our daily news magazine program आज सवेरे, wherein we share the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 19th of November. I'll begin with the main stories. Prime Minister Narendra Modi will visit Andhra Pradesh and Tamil Nadu today. During his visit to Andhra Pradesh, Mr. Modi will visit the holy shrine and Mahasamadhi of Bhagwan Sri Satya Sai Baba in Puttaparthi to offer his obeisance. The Prime Minister will also participate in the centenary celebrations of Bhagwan Sri Satya Sai Baba and will release a commemorative coin and a set of stamps honoring the life, teachings and enduring legacy of Sri Satya Sai Baba. He is also scheduled to address the gathering during the program. Later, the Prime Minister will travel to Coimbatore in Tamil Nadu and will inaugurate the South India Natural Farming Summit. During the program, Mr. Modi will release the 21st installment of PM Kisan, amounting to more than 18,000 crore rupees, to support 9 crore farmers across the country. The Prime Minister will also address the gathering. South India Natural Farming Summit, commencing today, is being organized by Tamil Nadu Natural Farming Stakeholders Forum with an aim to promote sustainable, eco-friendly and chemical-free agriculture practices. More from our correspondent.
Coimbatore, the Manchester of South India, as it is favourably called, has been decked up for today's summit. Traffic diversion has been announced in the arterial Avinashi Road at Coimbatore. The road will be closed from 12 noon to 4 p.m. Trucks have been banned from entering the city from 8 a.m. to 8 p.m. Security has been beefed up at the Coimbatore International Airport. Private vehicles and call taxis are restricted from entering the airport between 12 to 3 p.m. today. It is to be noted that the total of India's export is pegged at rupees 2,43,042 crore, according to 2024-25 analysis released by the government. Tamil Nadu stands third in the country in agricultural production with 9.18% according to the 2023-2024 statistics. The state shares 1.95% in spices production, first in floriculture, second in livestock production with 13.96% share, 6.50% share in fruits production, 4.62% in vegetable production and 25.40% in plantations production. This summit also has agri-related experts to share the knowledge and experience in increasing production and exporting the food products from the country. Joy from Coimbatore.
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज पटना में नई सरकार के गठन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए विधायक दल की बैठक आज होगी। बैठक में नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन का नेता चुने जाने की संभावना है। एनडीए के 5 घटक दलों भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी विधायक इस बैठक में शामिल होंगे और गठबंधन का नेता चुनेंगे।
Enforcement Directorate ED has arrested Jawed Ahmed Siddiqui, chairman of the Al Falah Group under Prevention of Money Laundering Act PMLA 2002. The arrest took place following a detailed investigation and analysis of evidences gathered during search action conducted at Al Falah Group premises in the ongoing probe in an enforcement case information report. ED has conducted search operations at 19 locations in Delhi yesterday, including the premises of the Al Falah University and residential premises of key persons of the Al Falah group. The investigation has revealed that large amounts of proceeds of crime have been generated.
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत को आतंकवाद से लोगों की रक्षा करने का अधिकार है और देश इसका उपयोग करेगा। रूस की राजधानी मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि दुनिया को आतंकवाद के किसी भी रूप को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनानी चाहिए।
The 56th International Film Festival of India, IFFI 2025, will open with a colorful cultural parade celebrating India's cinematic legacy in Goa tomorrow. The film festival is going to be held in Panaji till the 28th of this month. It will bring together guests and filmmakers from more than 80 countries and 270-plus films from India and abroad. More from our correspondent.
IFFI is a Dreamweaver celebration where the flicker of the projector becomes a heartbeat. A mosaic of countless stories converging under one sky. Spanning across five main venues in Goa, in these 8 days, every screening is a voyage. From the silent tremor of unspoken longing to the roar of a revelation. From the indigenous pulse of Indian panorama to the distant echoes of world cinema. Workshops, masterclasses, film bazaar markets, each an invitation to the curious, the bold, the heart-hungry creators. The festival's purpose holds steady, to provide a common platform for filmmakers of the world to project their excellence in film art, promoting friendship and cooperation among people of the world. The festival is at once intimate and expansive. Intimate in the hush of a single viewer enthralled by a frame, expansive in the millions of frames that ripple across continents, brought together here on Goa's luminous shores. In this poetic lens, the festival becomes a mirror and a window. A mirror reflecting our yearning for connection. A window opening onto the infinite vault of human imagination. The silver screen invites us to dream, to remember, to feel. And as the curtains fall, the light lingers in our minds. Perhaps a flicker, perhaps a flame. Reminding us that cinema is more than motion. It is life in motion. And we are alive. This is Saira Mujtaba with Adarsh Kumar, Panaji, Goa.
आकाशवाणी समाचार की पॉडकास्ट श्रृंखला कहानी के पीछे का व्यक्ति के अंतर्गत आज राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित नांग एकथानी मोंगलांग के साथ वार्ता प्रसारित की जाएगी। सुश्री एकथानी ने अरुणाचल प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालय पचीन में केवल 2 वर्षों में 10वीं कक्षा का परिणाम 30% से 100% करके एक चमत्कार किया था। इस श्रृंखला में उन्होंने अपनी चुनौतियों और उनसे निपटने के उपायों के बारे में जानकारी दी।
When you are introducing something new, कुछ भी चीज इंट्रोड्यूस करते हैं आप तो डेफिनेटली मतलब कोई डिस्करेज करने वाला बहुत सारे इनकरेज करने वाला बहुत ही कम होंगे। आप कोशिश करने से पहले हारिए मत, कोशिश तो कीजिए, आप रिजल्ट के बारे में मत सोचिए।
ये पॉडकास्ट आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसका पुनः प्रसारण शाम 5:30 भी होगा।
In sports and cricket, India A marched into the semi-finals of the Rising Stars Asia Cup 2025 tournament with a 6-wicket win over Oman in their final Group B match at the West End Park International Cricket Stadium in Doha, Qatar yesterday. After deciding to field first, the Indian cricket team restricted Oman to 135 for 7 in 20 overs. In reply, India A chased down the target with confidence, reaching 138 for 4 in 17.5 overs. The win helped India seal the second spot on the Group B points table and confirm their place in the semi-finals. Delhi Traffic Police has announced traffic arrangements and diversions in view of the event marking the 350th martyrdom day of Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji at Red Fort from today until the 25th of this month. An official said that a large public gathering and VVIP movement are expected during the week-long celebrations. He said the traffic restrictions would be implemented on Netaji Subhash Marg and Nishad Raj Marg. During this period, buses and commercial vehicles coming from Delhi Gate and Chhata Rail Chowk might be diverted towards Ring Road. People are advised to avoid Ring Road from Rajghat to Chandgi Ram Akhada, नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राजमार्ग, एसपीएम मार्ग, लोथियान रोड एंड बुलेवार्ड रोड।
और अब रुख करते हैं कुछ प्रमुख महानगरों का और जानते हैं वहां का हाल। शुरुआत चेन्नई से।
That's right. The Madras High Court has directed Thiruvannamalai District Administration and the DGP to file their response by the 24th of this month to a petition seeking a report on the security arrangements made for the upcoming Karthigai Deepam Festival in Thiruvannamalai. Justice P.B. Balaji passed the order on a plea saying that several devotees are expected to gather at the Arunacheshwar Temple for the festival scheduled for the 3rd of December. Therefore, adequate measures must be taken to prevent crowd-related incidents and provide essential facilities. Chennai Metro Water will soon install 1 lakh smart meters to help track water supply and usage in real time, send accurate billing to consumers' phones, and improve leak detection to help cut wastage and avoid unexpected changes. In the first phase, the meters will be installed for bulk consumers and the readings will be sent to consumers monthly. About 5 crore have been allocated for the initiative. T.G. Vinay, Managing Director of Metro Water, said that the meters would be installed after preliminary checks. Metro Water plans to increase the number of paying consumers with charges applicable for buildings of more than 500 square feet.
और अब समय है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों का। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल आजादपुर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त बस टर्मिनल का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि नया टर्मिनल राजधानी के सार्वजनिक परिवहन को तेज, सुरक्षित और यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 40 नई ई बसों को हरी झंडी दिखाकर जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार लगातार डीटीसी बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल कर रही है, जिससे दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सके। आजादपुर से अब 21 प्रमुख रूटों पर 116 बसें नियमित रूप से संचालित होगी, जिनमें अधिकांश इलेक्ट्रिक बसें शामिल है। इस टर्मिनल को आजादपुर मेट्रो स्टेशन से फुटओवर ब्रिज के माध्यम से जोड़ा गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर इंटर मॉडल कनेक्टिविटी मिलेगी और यात्रा समय भी कम होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि बस पास सेक्शन, बेबी फीडिंग रूम, आधुनिक प्रतीक्षालय और सुरक्षित कवर वॉकवे जैसी सुविधाएं आम यात्रियों के सफर को अधिक आरामदायक बनाएंगी। दिल्ली से एक और खबर है, जहां भारत मंडपम में चल रहा 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। इस वर्ष मेले की थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। मेले में बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य हैं, वहीं मेले का विशेष राज्य झारखंड है। इस वर्ष मेले में देश के सभी राज्यों सहित 60 से अधिक मंत्रालय भाग ले रहे हैं। 14 दिन तक चलने वाले इस मेले में संयुक्त अरब अमीरात, चीन, ईरान, दक्षिण कोरिया और मिस्र सहित 12 देश भी अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं।
मूविंग ऑन टू बैंगलोर, कर्नाटका डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर डी के शिवकुमार इज इन्फॉर्म दैट अ न्यू डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर ऑन मेक्केदातु बैलेंसिंग रिजर्वॉयर अक्रॉस रिवर कावेरी विल बी सबमिटेड फॉर अप्रूवल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू स्टे द डीपीआर ऑन अ पिटिशन बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। Speaking to media persons in Bengaluru, he said that a meeting with officials and Kaveri Niravari Nigam Board of Directors in Bengaluru discussed the way forward after the apex court order. He further said that a new DPR will be submitted with the details of the forest area that will be submerged after the reservoir is built at Mekkadatu.
अब चलते हैं भारत की औद्योगिक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र कैबिनेट की इंफ्रास्ट्रक्चर समिति ने कल पुणे और शिरूर के बीच एक मल्टी लेन राजमार्ग के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। लगभग 53.5 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में एक 4 लेन की सड़क और एक 6 लेन का एलिवेटेड एक्सप्रेसवे शामिल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता वाली समिति ने छत्रपति संभाजीनगर जिले में 2 6 लेन के राजमार्गों को भी मंजूरी दी। शेंद्रा औद्योगिक स्टेट से बिटकिन औद्योगिक स्टेट तक 32.8 किलोमीटर का खंड और बिटकिन से धोरेगांव तक 26 किलोमीटर का खंड, जो छत्रपति संभाजीनगर पुणे राजमार्ग को जोड़ता है। वहीं मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा CSMIA कल सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 6 घंटे के लिए अपने दोनों रनवे अस्थायी रूप से बंद रखेगा ताकि वार्षिक मानसून पश्चात रनवे रखरखाव किया जा सके। इस निर्धारित बंद के दौरान सतह की मरम्मत, तकनीकी निरीक्षण, प्रकाश व्यवस्था, चिन्हों और जल निकासी प्रणालियों की जांच की जाएगी ताकि सुरक्षित और कुशल उड़ान संचालन सुनिश्चित किया जाए। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि व्यवधान को कम करने के लिए एयरलाइनों और हितधारकों के साथ समन्वय 6 महीने पहले शुरू हो गया था। CSMIA का मानना है कि विमानन सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए नियोजित रखरखाव आवश्यक है।
Moving on to Hyderabad, Telangana State Government has launched Mi Seva on WhatsApp with an eye on improving access and convenience for people seeking to access government-to-citizen G2C services across nearly 40 departments. The Mi Seva WhatsApp services introduce an advanced conversational artificial intelligence AI-driven platform that enables citizens to access government services through a simple chat interface. State IT and Industries Minister D. Sridhar Babu, who launched the service, said extending access to more than 580 government-to-citizen services through a unified and intuitive chat-based interface is part of the continued efforts to bring government within reach of the people using technology. The minister said from hall tickets, weather information, government alerts to booking bus tickets, a number of services are likely to be added in the future. The Mi Seva services on WhatsApp will be available in Telugu, Urdu and with voice command features soon. The service can be accessed by sending a hi message to WhatsApp number 80969-58096. Users can apply for certificates such as birth, death and caste, make payments for utilities like electricity and water, as well as property tax, remit police challan payments, track applications, receive updates and download issued documents.
अब चलते हैं कोलकाता की ओर। पश्चिम बंगाल सरकार ने विश्व बैंक, नीदरलैंड और विभिन्न विभागों की तकनीकी सहायता से सुंदरबन की नदियों और तटरेखा की सुरक्षा के लिए एक योजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के उद्देश्य तटीय संरक्षण, नदी तटबंध निर्माण, परिवहन और संरचना विकास और विस्थापित लोगों का पुनर्वास है। 4,100 करोड़ रुपए की लागत सिंचाई मंत्री मानस भुनिया ने कोलकाता के विधान नगर में एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की और सुंदरवन के पारिस्थितिकी तंत्र तथा निवासियों की सुरक्षा के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में बात की। तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी FM गोल्ड पर जया और प्रमोद के साथ। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब जानते हैं कि आज मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। राजधानी दिल्ली में आज मध्यम कोहरे का अनुमान है। शहर में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं मुंबई में आज आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं बात कोलकाता की तो वहां भी मौसम साफ रहेगा। आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं प्रमोद से।
That's right. Chennai is expected to have a partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature will be around 25 degrees Celsius and the maximum will be around 28 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with light rain or drizzle. The minimum temperature is expected to be 18 degrees Celsius and the maximum will be around 25 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 15 degrees and a maximum of 29 degrees Celsius.
और श्रोताओं, अब वक्त आ गया है अतीत के पार उन प्रमुख घटनाओं को याद करने का जिन्होंने आज के दिन अपनी एक विशेष पहचान दर्ज की। हालांकि उससे पहले हम जानेंगे कि आज का दिन किन मायनों में खास है, लेकिन उससे पहले सुनिए। आज शौचालय दिवस है।
दुनिया चली मार्स पे, चांद जमी पे बिखरे हो। अरे ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हुआ, अब 3D में सब दिख रहे हो। दुनिया चली मार्स पे, चांद जमीन पे बिखरे हो। ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हुआ, अब 3D में सब दिख रहे हो। हजारों चढ़ गए एवरेस्ट का पहाड़, हजारों चढ़ गए एवरेस्ट का पहाड़। भैया दाड़ 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 कर ले, अब तो टॉयलेट का जुगाड़। भैया
तो स्वच्छता गरिमा और स्वास्थ्य विशेषाधिकार नहीं बल्कि मूल अधिकार है। इस अधिकार की याद दिलाने, उसे जन चेतना की प्राथमिकता बनाने के लिए हर साल 19 नवंबर को दुनिया विश्व शौचालय दिवस मनाती है। यह दिन याद दिलाता है कि आधुनिकता, विकास, डिजिटल इंडिया की दौड़ में भी दुनिया के करोड़ों लोग आज सुरक्षित शौचालय से वंचित हैं।
That's right, Jaya. In fact, the theme for this year is We'll Always Need the Toilet, which emphasizes the constant need for sanitation despite a changing world. In India, World Toilet Day serves as a pivotal moment to reinforce efforts towards sustaining the nation's open defecation-free ODF status. Today is also International Men's Day. The day celebrates the positive value men bring to the world, their families and communities. The theme for this year is Celebrating Men and Boys. Its observance aims to foster a more inclusive and empathetic society for all men and boys.
श्रोताओं, इस समय देश राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह भी मना रहा है। राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह हर साल 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य नवजात शिशु के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
Today is also World Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD Day. It's organized by the Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, GOLD, and the third Wednesday of November is celebrated. The COPD is a common lung condition that causes restricted airflow and breathing problems. It occurs when the airways in the lungs become inflamed or damaged.
और अब बात करते हैं आज के इतिहास की। आज 19 नवंबर 2025 है और आज ही के दिन 1895 में फ्रेडरिक ई ब्रिड्सडेल ने पेंसिल के लिए पेटेंट कराया था।
1863 US प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन डिलीवर्ड द ब्रीफ बट रिनाउंड गेटिसबर्ग एड्रेस एट द डेडिकेशन ऑफ द नेशनल सेमेट्री इन पेंसिल्वेनिया ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर।
वर्ष 1933 में यूरोपीय देश स्पेन में ऐसा पहला राष्ट्रीय चुनाव हुआ था जिसमें महिलाओं ने पहली बार मतदान किया था।
1969 नवंबर ब्राजीलियन फुटबॉलर प्लेयर पेले स्कोर्ड हिज 1000th करियर गोल एंड सेम इन 1975 दिस डे द ड्रामेटिक फिल्म वन फ्लू ओवर द कुकूज़ नेस्ट वाज रिलीज्ड इन अमेरिकन थिएटर्स एंड बिकेम द फर्स्ट फिल्म सिंस इट हैपेंड वन नाइट टू विन द एकेडमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, लीड एक्टर, लीड एक्ट्रेस एंड स्क्रीन प्ले।
और आज ही के दिन नवे एशियाई खेल दिल्ली में शुरू हुए, जिसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था।
1994 ऐश्वर्या राय विंस द मिस वर्ल्ड क्राउन एंड इन 2007 अमेजन बिगैन सेलिंग द किंडल, द वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग डिवाइस दैट प्लेड अ की रोल इन पॉपुलराइजिंग ई बुक्स।
और आज ही के दिन 1997 में कल्पना चावला अंतरिक्ष जाने वाली पहली महिला बनी थी। वहीं 2008 में संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख मोहम्मद अलबदेई ने वर्ष 2008 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड देने की घोषणा की थी। और अब समय है उन प्रमुख व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। हम याद कर रहे हैं मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को। जब भी रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र होता है तो सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी ये कविता अनायास ही जुबां पर आ जाती है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी संसद तावन में वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आज आधुनिक भारत के प्राचीन नायक केशव चंद्र सेन की जयंती है। केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन समाज को बेहतर बनाने के लिए समर्पित कर दिया। वे बड़े तीव्र बुद्धिक, तार्किक और विद्वान युवक थे।
Today is also the birthday of Shweta Mohan, an Indian playback singer and music producer. She has recorded songs for films and albums in all the four South Indian cinema, namely Tamil, Malayalam, Telugu and Kannada, besides also singing in a few Hindi films, and has established herself as a leading playback singer of South Indian cinema. She is the daughter of famous playback singer Sujata Mohan and Dr. Krishna Mohan. Shweta has received 5 Filmfare Awards for Best Female Playback Singer, 1 Kerala State Film Award and 1 Tamil Nadu State Film Award. We have a song. Let's listen to it.
आज पुण्यतिथि है संथाली भाषा के विद्वान शिक्षाविद और पद्मश्री से सम्मानित दिगंबर हांसदा की। जनजाति और उनकी भाषा के उत्थान के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वे केंद्र सरकार के ट्राइबल अनुसंधान संस्थान और साहित्य अकादमी के भी सदस्य रहे। उन्होंने भारतीय संविधान का भी संथाली भाषा में ओवचिकी लिपि में अनुवाद किया था। श्रोताओं, पहलवानी और अभिनय का कोई तालमेल नहीं है। दोनों क्षेत्र नदी के दो किनारे की तरह है, जिनका मिलना संभव नहीं है। लेकिन अपनी प्रतिभा और क्षमता से दोनों ही क्षेत्रों में जिन विरले लोगों ने सफलता हासिल की, उनमें दारा सिंह का नाम अग्रणी है। दारा सिंह जब पहलवानी करते थे तो उनके जैसा कोई पहलवान नहीं था, और अभिनय करते हुए रामायण में भगवान हनुमान का किरदार निभाया था तो उनके जैसा कोई किरदार फिर कभी कोई नहीं निभा पाया। सुनते हैं रावण पुत्र के साथ हनुमान का ये संवाद।
जानते नहीं हमारे राज्य में चोरी का दंड बड़ा भीषण है।
मैं तो समझा था जिस नगरी का राजा स्वयं चोर, उस नगरी में चोरी करने पर दंड नहीं पारितोषिक मिलेगा। यदि इस राज्य में चोर को दंड दिया जाता है तो पहला दंड तुम्हारे पिता को मिलना चाहिए, जो चोरी से एक अबला स्त्री को उठा लाया है।
Today is the birthday of Tara Sutaria, an Indian actress and singer who works in Hindi films, beginning her career as a singer in Disney India's reality show Big Bada Boom, and transitioned into acting with the channel sitcoms like The Sweet Life of Karan Nagbir and the Oye Jassi serial. Sutara made her debut film in 2019 with Student of the Year 2, for which she won the Zee Cine Award for Best Female Debut. Let's listen to her song picturized on her.
मोहब्बत में यूं हद को पार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, दर्द की हदों।
हम याद कर रहे हैं भारतीय फिल्म जगत को अपनी मधुर संगीत लहरियों से सजाने सवारने वाले महान संगीतकार सलिल चौधरी को उनकी जयंती पर। उनके संगीत बदगीत आज भी फिजा के कण कण में गूंजते हैं।
इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा,
इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू।
भारतीय हिंदी सिनेमा की ख्याति प्राप्त अभिनेत्री जीनत अमान आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने पर जीनत अमान को परवीन बॉबी के साथ हिंदी सिनेमा में अग्रणी अभिनेत्रियों में आधुनिक रूप देकर उनकी छवि पर स्थायी प्रभाव छोड़ने का श्रेय दिया जाता है। फिल्म यादों की बरसात के सफलता के बाद जीनत अमान स्टार बन गई थी। इस फिल्म में चुरा लिया है तुमने जो दिल को गीत जीनत अमान पर फिल्माया गया और युवाओं के दिल में वो एक धड़कन बन गई। श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए जया और प्रमोद को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए सुनते रहें आकाशवाणी एफएम गोल्ड।
That's right. Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a superb day.
Namaskar.